नमस्कार भारत, 19 दिसंबर दिन शनिवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। नेशनल हेराल्ड मामले में आज अदालत में पेश होंगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी। इस मामले पर सरकार को घेर चुकी कांग्रेस ने कहा, पार्टी न्यायालय का करती है सम्मान।
कानून का एहतराम हम करते हैं, कांग्रेस पार्टी करती है और कांग्रेस की लीडरशिप करती है। और उस दिन भी जिस दिन पार्लियामेंट में इस मामले के बाद हंगामा हुआ था, उस दिन भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम लोग जुडिशरी को रिस्पेक्ट करते हैं।
बिहार में 1 अप्रैल से नहीं मिलेगी देसी शराब, कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने की घोषणा।
हमारी जो नई उत्पाद नीति बनी है उसका लक्ष्य है कि हम पूर्ण मद्य निषेध लागू करेंगे।
कैसी है कल रिलीज हुई फिल्में बाजीराव मस्तानी और दिलवाले, सुनिएगा फिल्म समीक्षा में। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अशोक कुमार से। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगे। उन्हें भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर कोर्ट में तलब किया गया है। याचिका में धोखाधड़ी और संपत्ति की हेराफेरी के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरिया में शांति प्रक्रिया से संबंधित एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूर किया है। प्रस्ताव में सीरियाई सरकार और विपक्ष के बीच जनवरी की शुरुआत में वार्ता कराने और संघर्ष विराम लागू कराने का समर्थन किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सीरिया के लोग ही अपने देश के भविष्य का फैसला करेंगे और इसमें वहां 18 महीनों के भीतर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में चुनाव कराने की समय सारणी भी तय की गई है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने यूरोपीय नेताओं से आग्रह किया है कि वो शरणार्थियों को बसाने के लिए एक विशाल कार्यक्रम तैयार करें। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि दुनिया भर में जबरन विस्थापित किए जाने वाले लोगों की संख्या इस साल रिकॉर्ड 6 करोड़ को पार कर सकती है। UNHCR के प्रमुख एंटोनियो गुतेरेश ने कहा,
डिस्प्लेसमेंट इज गेटिंग वर्स्ट इन 2016।
2016 में विस्थापन की स्थिति और खराब होगी। हमने सोचा था कि 2015 में विस्थापितों की संख्या रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है, लेकिन हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा ही हो रहा है। गुतेरेश ने कहा कि जब तक सीरिया, यमन और लीबिया में जारी संकट हल नहीं कर लिए जाएंगे, विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती रहेगी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी सेना ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमरीकी नेतृत्व वाले गठबंधन के एक हवाई हमले में फलूजा के निकट गलती से इराकी सैनिकों के मारे जाने की आशंका है। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तरफ से जारी बयान में ये नहीं कहा गया है कि हमले में कितने इराकी मारे गए हो सकते हैं। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि वो इस घटना की जाँच करेंगे। ग्रीस की राजधानी एथेंस में हजारों लोगों ने प्रदर्शन कर यूरोपीय देशों से मांग की है कि वो शरणार्थियों के लिए अपनी सीमाएं खोलें। प्रदर्शन में मध्य पूर्व से आने वाले प्रवासी भी शामिल हुए जो ग्रीस में फंसे हुए हैं, क्योंकि पड़ोसी देशों ने पिछले महीने अपनी सीमाएं बंद कर लीं। मैसेडोनिया और अन्य बाल्कन देश सिर्फ सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से आने वाले लोगों को ही अपनी सीमा में आने दे रहे हैं ताकि वो आगे उत्तरी यूरोप की तरफ जा सकें। और अफ्रीकी देश रवांडा में हुए जनमत संग्रह के आंशिक नतीजों से संकेत मिल रहे हैं कि मतदाताओं ने बहुमत से उस संविधान संशोधन का समर्थन किया है जिसके मुताबिक राष्ट्रपति पाउल कागामे 2034 तक सत्ता में रह सकते हैं। बीबीसी समाचार।
आज है 19 दिसंबर दिन शनिवार। नमस्कार भारत में, अभिवादन स्वीकार कीजिए पंकज प्रियदर्शी का। आज बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड मामले का अहम दिन है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज इस मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगे। इस मामले को लेकर पिछले कई दिनों से आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी हुई है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया था, तो राहुल गांधी इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को जिम्मेदार बता चुके हैं, तो सोनिया गांधी कह चुकी हैं कि वे इंदिरा गांधी की बहू हैं और किसी से नहीं डरती। संसद की कार्यवाही भी इस मामले पर कई दिनों तक बाधित रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सोनिया और राहुल गांधी को अदालत में पेश होना पड़ रहा है। स्वामी इस मामले में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं, तो कांग्रेस इससे इनकार करती है। पूरी रिपोर्ट संदीप सोनी से।
दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के साथ पार्टी कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, पार्टी महासचिव ऑस्कर फर्नांडीज, पत्रकार सुमन दुबे और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी सहयोगी सैम पित्रोदा को भी तलब किया है। जानकारों का मानना है कि खुद को इंदिरा गांधी की बहू बताकर संसद के भीतर और बाहर आक्रामक रुख दिखाने वाली सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी का रुख इस मामले में कुछ बदला है और उसके नेता आज किसी नई रणनीति के तहत अदालत में पेश होने की तैयारी में हैं। इस बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता शकील अहमद ने बीबीसी से कहा,
कानून का एहतराम हम करते हैं, कांग्रेस पार्टी करती है और कांग्रेस की लीडरशिप करती है। उस दिन भी जिस दिन पार्लियामेंट में इस मामले के बाद हंगामा हुआ था, उस दिन भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम लोग जुडिशरी को रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं और कानून का जो भी ये होगा हम उसका पालन करेंगे। लेकिन इस मामले में एक पॉलिटिकल एंगल भी है, पॉलिटिकली हम अपना उसको फाइट करेंगे। मगर जहां तक न्यायालय का मामला है, जो उनके वकील हैं, जो हम लोगों की तरफ से सोनिया जी या राहुल जी या मोतीलाल वोरा जी या ऑस्कर फर्नांडिस साहब, इन लोगों के या और भी जो लोग हैं, उनके जो वकील उनको मशवरा देंगे वो करेंगे।
कांग्रेस जहां इस मामले को राजनीति से प्रेरित बता रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें अपनी किसी भूमिका से इनकार करती रही है। बीते दिनों संसद में इस मुद्दे पर शोर शराबे के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा था,
न्यायपालिका इस देश में स्वतंत्र है, किसको नोटिस जारी करना नहीं जारी करना, किसको समन करना नहीं करना, किसका संदर्भ में केस देना नहीं देना, ये सब न्यायपालिका विचाराधीन है, इसमें सरकार है ही नहीं।
इस मामले में याचिका दायर करने वाले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जनरल की संपत्ति लेने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए कर्ज के तौर पर दिए थे, जो गैर कानूनी है। बहरहाल आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पेशी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने अदालत और आसपास के इलाके में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए हैं। संदीप सोनी, बीबीसी दिल्ली।
नेशनल हेराल्ड में कथित वित्तीय गड़बड़ी का ये मामला है क्या, और आज इस मामले में क्या कुछ हो सकता है? क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत के लिए अर्जी देंगे या मजिस्ट्रेट उन्हें जमानत देने से मना भी कर सकते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अरविंद जैन से बात की।
चूंकि कंप्लेंट केस है तो मैजिस्ट्रेट उनकी अपीयरेंस होने के बाद उन्हें जमानत पर छोड़ सकता है और उसके बाद फिर मुकदमा चलेगा। जो गवाहियां होंगी या फिर उनके क्रॉस एग्जामिनेशन होंगे, वो एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है कानून का, इसमें कितना समय लगेगा ये भी अभी कहना मुश्किल है। पर फिलहाल ये है कि उन दोनों को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और पेश होकर के उन्हें जमानत मेरा ख्याल है कि मिल जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे अमूमन केसेस में, कंप्लेंट केसेस में मजिस्ट्रेट जमानत पे छोड़ देता है।
और यदि कोई जमानत के लिए आवेदन ही ना करे तो वैसी सूरत में क्या हो सकता है?
जमानत की एप्लीकेशन देंगे या नहीं देंगे ये भी कहना मुश्किल है। कांग्रेस इस दिशा में सोच रही है कि वो बेल बॉन्ड ना दें, लेकिन अगर बेल बॉन्ड नहीं देते हैं तो मजिस्ट्रेट के पास और कोई चारा नहीं है अरविंद केजरीवाल की तरह से उन्हें जेल में भेज देने का, और ये कोई बहुत विवेकपूर्ण या बुद्धिमता का काम नहीं होगा। ऐसा कांग्रेस के एक धड़ा और जो उसके सीनियर सलाहकार हैं वो भी ऐसा मानते हैं। भले ही गैर जमानती अपराध है, फिर भी बेल पे छोड़ देना, जमानत पे छोड़ देना एक परंपरा के तौर पर अभी तक चलता आया है, और मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा कि ऐसे किसी केस में मजिस्ट्रेट जमानत के लिए मना करे। तो जमानत हो जाएगी और उसके बाद का आगे का मुकदमा चलेगा।
इस पूरे मामले को सरल शब्दों में बता पाएंगे आप कि ये क्या पूरा मामला है नेशनल हेराल्ड अखबार का, जिसकी वजह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत में पेश होना पड़ रहा है?
पूरा मामला जहां तक मैं समझता हूं वो ये है कि एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड एक कंपनी थी जो नेशनल हेराल्ड अखबार को चलाने के लिए आजादी से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के इनिशिएटिव पे कांग्रेस के मुखपत्र के रूप में उसे शुरू किया गया। आजादी के बाद भी ये काफी टाइम तक चलती रही कंपनी, बीच में कुछ घाटे हुए, कुछ मजदूरों की प्रॉब्लम्स हुई, तो उसमें कांग्रेस का चूंकि मुखपत्र था और उसका न्यूज़पेपर था, तो उन्होंने समय समय पर 2002 से 2012 के बीच में करीबन 90 करोड़ रुपए उस कंपनी को कर्ज दिया कि वो कंपनी चलती रहे, लेकिन वो उसके बावजूद भी नहीं चल पाई। तब एक और कंपनी यंग इंडिया ने 50 लाख रुपए और दिए और 50 लाख रुपए के बदले में एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के जो शेयर थे वो अपने नाम में करवा लिए।
तो ये पूरा मामला अदालत की चौखट तक पहुंचा किस तरह से?
इसके ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेंट की थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई हमारे हिसाब से तो कोई वायलेशन नहीं बनता है, इनकम टैक्स के हिसाब से भी कोई वायलेशन नहीं बन रहा था, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं क्या नहीं है वो डिफाइंड नहीं है कहीं कानून में। तब ये कंप्लेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने इनके खिलाफ डाली, जिसपे सम्मन हो गया था। सम्मन के अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी ने हाईकोर्ट रिविजन फाइल की थी, पर हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आप स्टेट के सामने ही जाएं और उसे बताएं जो भी आपको कहना है।
तो आज दोपहर बाद 3 बजे सोनिया गांधी और राहुल गांधी दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पेश होंगे। बिहार में 2/3 बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनाने के कुछ ही दिनों बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में शराबबंदी लागू करने के अपने इरादे को स्पष्ट कर दिया था। कल रात कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि अगले साल 1 अप्रैल से राज्य में देसी और मसालेदार शराब पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी जाएगी। रिपोर्ट सुना रहे हैं पटना से नीरज सहाय।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2010 के विधानसभा चुनाव में जब 2/3 बहुमत हासिल किया था, तब उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए बदनाम हो चुकी विधायक निधि को एक झटके में समाप्त कर दिया था। वहीं जानकार बताते हैं कि 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद 2/3 बहुमत पाने वाले सीएम नीतीश कुमार अपने कार्यकाल के पहले महीने में पूर्ण शराबबंदी के वादे पर कुछ नरम दिखे। शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी किए गए नई नीति के तहत अगले साल के अप्रैल महीने से देशी शराब पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है, जबकि विदेशी शराब की खुदरा दुकानें नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र तक ही सिमटी रहेंगी जिन्हें सरकार चलाएगी। नई नीति के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बताते हैं,
हमारी जो नई उत्पाद नीति बनी है उसका लक्ष्य है कि हम पूर्ण मद्य निषेध लागू करेंगे और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे, और पहले चरण में देसी और मसालेदार शराब के उत्पादन और बिक्री जो भी प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक कदम है कानूनी तौर पर वो उठाने का फैसला हो। जहाँ तक विदेशी और IMFL शराब का संबंध है, उसकी बिक्री भी सीमित कर दी गई और अब नगर निगम और नगर पालिका नगर परिषद के क्षेत्र तक ही वे सीमित रहेंगे। और इस निर्णय के बाद अगर एक तरह से देखें तो कुल दुकानों की जितनी संख्या थी उसमें 90% की कमी आ जाएगी।
शराबबंदी से जुड़े इस फैसले को सीएम नीतीश महागठबंधन की सरकार की एक उपलब्धि बताते हैं, साथ ही इसे जन आंदोलन और सामाजिक आंदोलन का स्वरूप देने की बात करते हैं। इसके लिए वे महिलाओं से आगे आने का आह्वान भी करते हैं। उनके अनुसार
शराब के खिलाफ एक सामाजिक अभियान भी हम लोग चलाए और उसके लिए भी पूरी योजना हम लोगों ने बनाई है। हमारे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी सेविका, शिक्षिकाएं, अन्य प्रकार के जो संगठन हैं, उन सबों को हम लोग शामिल, जनप्रतिनिधियों को, सभी को शामिल करेंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश ने शराबबंदी को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का ऐलान तो किया है, लेकिन नई उत्पाद नीति में जितने सुराग छोड़े गए हैं उससे लगता है कि शराबबंदी का हश्र भी पान मसाला और गुटखे पर लगे प्रतिबंध की तरह दिखावटी साबित होगा या फिर बिहार पूरी तरह से शराब मुक्त होगा, यह तो आने वाला कल ही बताएगा।
ये थे पटना से नीरज सहाय। और अब चर्चा संसद की। राज्यसभा में बीते कई दिनों से जारी गतिरोध के मद्देनजर सभापति हामिद अंसारी ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि सदन में लंबित 6 विधेयकों को जल्द पारित कर दिया जाएगा, लेकिन GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। एक रिपोर्ट के साथ हैं प्रगति सक्सेना।
राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने ये सर्वदलीय बैठक ऐसे समय बुलाई है जब राज्यसभा में कुछ मुद्दों को लेकर बीते कुछ दिनों से लगातार गतिरोध बना हुआ है और संसद के शीतकालीन सत्र की अवधि जल्द ही पूरी होने वाली है। बैठक कैसी रही इस पर हामिद अंसारी ने महज एक शब्द गुड कहा। बैठक के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने संवाददाताओं से कहा,
ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें काफ़ी सार्थक और पॉजिटिव चर्चा हुई है और अभी तक जो सदन चला है उसमें जो कामकाज नहीं हो पाया उसमें लगभग सभी पार्टियों के लोगों ने चिंता भी व्यक्त की है, और जो बचा हुआ अभी 3 दिन है उसमें सभी ने निर्णय किया है कि कामकाज होना चाहिए। जो सरकारी बिल हैं, जो देश के विकास से जुड़े हुए बिल हैं, जो देश के आम लोगों, गरीबों, कमज़ोर तबकों की तरक्की से जुड़े हुए बिल हैं वो पास होने चाहिए, वो देर रात तक बैठ करके हम पास करेंगे।
विवादित GST बिल के बारे में पूछे जाने पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली विपक्ष से इस बारे में पहले ही अपील कर चुके हैं। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस बैठक में कोई नई चर्चा नहीं हुई, जो भी बात हुई उस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले ही चर्चा हो चुकी है।
जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा हुई थी कोई नई बात नहीं। अब कुछ बिल्स जो हैं जिन लोगों का हमने वादा किया था, जैसे SC ST बिल है, उसका हम लोगों ने वादा किया था कि हम पूरी तरह से इसको पास करेंगे। इसी तरह से अप्रोप्रिएशंस बिल है, अनिवार्य है पास करना, तो मेरे ख्याल में वो तमाम बिल जिसपे हमने पहले
GST पे
कोई बात नहीं।
जैसा कि गुलाम नबी आजाद कह रहे थे कि सर्वदलीय बैठक में GST बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई, ऐसे में संकेत यही मिल रहे हैं कि संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार GST बिल राज्यसभा में शायद ही पारित करा पाए।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश की नाबाम टुकी सरकार को राहत दी है। न्यायालय ने राज्यपाल के आदेश पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 1 फरवरी को होगी। एक रिपोर्ट के साथ हैं दिलीप कुमार शर्मा।
पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखुआ की ओर से हाल ही में बुलाई गई विधानसभा की विशेष बैठक में नाबाम टुकी सरकार के खिलाफ एक तरफा अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। ऐसा प्रस्ताव पारित होने के बाद अरुणाचल प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। ऐसी स्थिति के बीच गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को राज्यपाल के सारे आदेशों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष नाबाम रेबिया को हटाने के निर्णय पर भी रोक लगा दी है। जाने माने अधिवक्ता एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने हटाए गए विधानसभा अध्यक्ष रेबिया की ओर से दायर याचिका पर अपना पक्ष रखा। सिब्बल ने कहा,
हमने कहा था कि जो फैसले गवर्नर साहब ने किए हैं वो एक तरफिया है और किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष में है, और उसी आधार पे हाईकोर्ट ने उनको कहा है कि वो फैसले पर अमल नहीं होगा।
इससे पहले बुधवार को ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के सामने कांग्रेस विधायकों और कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त गतिरोध की स्थिति पैदा कर दी थी। उसके बाद राज्यपाल की विशेष अनुमति से अस्थायी सदन व्यवस्था के तहत विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर फटाफट उन्हें हटाने का निर्णय ले लिया गया। आनन फानन में एक होटल में बुलाई गई सदन में मौजूद 33 विधायकों ने टुकी सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हाथ उठाकर सहमति दी थी। ऐसी स्थिति में नाबाम टुकी सरकार का पतन लगभग तय हो गया था। इस बीच टुकी विरोधी खेमे ने अपने विधायक दल के नेता के रूप में बागी नेता कालिखो पुल का चयन भी कर लिया और शाम को ही नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी तय हो गया था। अरुणाचल प्रदेश में उत्पन्न राजनीतिक संकट और राज्यपाल के फैसलों को न्यायतंत्र और कार्यपालिका के बीच का टकराव माना जा रहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 फरवरी 2016 को होगी। अदालत की तरफ से सभी पार्टियों को नोटिस भेजा जाएगा। कोर्ट के निर्णय से भले ही 1 फरवरी तक टुकी सरकार को समय मिल गया है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में जो कोहरम मचा हुआ है उससे लगता नहीं कि आने वाले दिनों में टुकी अपनी सरकार को स्थिर रख सकेंगे।
ये थे गुवाहाटी से दिलीप कुमार शर्मा, और अब जान लेते हैं कि देश और दुनिया की किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगे। हरियाणा में राज्य सरकार ने आज से गीता जयंती समारोह मनाने का फैसला किया है। 2 दिन तक चलने वाले इस आयोजन के लिए हर राज्य को 10-10 लाख रुपए की राशि मुहैया कराई गई है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का चयन आज होगा। भारत इस दौरे में 12 से 31 जनवरी के बीच 5 वनडे और 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगा। भारत के पेशेवर मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र सिंह आज बुल्गारिया के सामेत यूसी नोवा के खिलाफ मैनचेस्टर में अपना साल का आखिरी मुकाबला खेलने उतरेंगे और चीन के सानिया शहर में आज मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का फाइनल होगा। भारत की अदिति आर्य समेत इस मुकाबले में दुनिया की 114 सुंदरियां हिस्सा ले रही हैं। उधर इराक में आज 40 साल बाद पहली बार मिस इराक सौंदर्य प्रतियोगिता होने जा रही है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की रेस में शामिल दावेदारों के बीच आज तीसरी बहस होगी। हालांकि हिलेरी क्लिंटन अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी बर्नी सैंडर्स से काफी आगे चल रही हैं।
और अब समय है फिल्म समीक्षा का। इस हफ्ते दो फिल्में रिलीज हुई हैं, बाजीराव मस्तानी और दिलवाले। कैसी हैं ये फिल्में बता रहे हैं वरिष्ठ फिल्म समीक्षक अर्णव बैनर्जी, उनसे बात की है इंदु पांडे ने।
और इस हफ्ते हमारी ऑडियंस बहुत ही कंफ्यूज रही होगी, तो पूछते हैं अर्णव से, क्योंकि वो आज टू फिल्म डाउन है। कैसी हालत है आपकी?
जी हाँ, मैं दो महाफिल्में, दो मेरे ख्याल से इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से दो बड़ी फिल्में देख के आ रहा हूँ। पहली फिल्म बाजीराव मस्तानी की अगर मैं बात कहूँ, वो एक बहुत ही बड़े बजट की फिल्म है, संजय लीला बंसाली की फिल्म है, तो जाहिर है बहुत लार्ज स्केल पे होगा सब कुछ। बहुत सेल्फ इंटेलिजेंट डायरेक्टर है, लेकिन मुझे लगता है कि संजय लीला बंसाली एक चीज में चूक जाते हैं और वो है हार्ट। उनका विजुअल सेंस बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हार्ट नहीं रहता, यानी दिल नहीं रहता, यानी हम चकाचौंध में ही डूब के रह जाते हैं, जिसकी वजह से बाजीराव मस्तानी डिसअपॉइंट करती है।
तो नंबरों की बात करें तो क्या कहेंगे आप?
उनकी एक चाह की वजह से, इतने बड़े स्केल पे सोच की वजह से, इसलिए मैं उसको 5 में से 2.5 दूंगा।
और जनता की राय होती है सर्वोपरि, तो आइए जानते हैं कि फिल्म बाजीराव मस्तानी हमारी ऑडियंस को कैसी लगी।
बहुत टाइम बाद इतनी अच्छी मूवी आई है।
फिल्म में सबसे बेस्ट कैमरा वर्क, एक्टिंग एंड म्यूजिक
बहुत अच्छी, इट वाज ग्रैंड।
बाजीराव मस्तानी इज अ वेरी वेल मेड फिल्म, स्टोरी लाइन सब कुछ, डायलॉग बहुत अच्छे, गाने सुपर हिट है, 5 में से 5 स्टार देना चाहिए।
बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की अय्याशी।
और अगर हम बात करें थोड़ा रोमांस, थोड़ा एक्शन, इतना सारा मसाला और बहुत सारी गाड़ियों की, दिलवाले।
ये सोचते ही अब आदमी सोच लेगा कि ये जरूर एक रोहित शेट्टी की फिल्म होगी जहां गाड़ियां उड़ाई जाएंगी। यानी एक स्क्रिप्ट डाल दी है जिसमें हर तरह का मसाला डाल दिया गया है, एक जैसे एक सब्जी बनाते हैं ना हम लोग, हर तरह के मसाले डाल दिए जाए।
दिलवाले ऑडियंस के दिल तक पहुंची?
देखिए, जहां तक शाहरुख खान और काजोल का सवाल है, लोग देखने तो जाएंगे, और जैसे मैंने कहा कि वो डिसअपॉइंट नहीं करते, दोनों भी कुछ अजीब सी कशिश है, लोग उनको देखते ही तालियां बजाने लगते हैं।
लेकिन फिर भी हम मजबूर हैं, आपको नंबर तो देने होंगे।
जहां तक शाहरुख का चार्म है या काजोल की खूबसूरती या दोनों की नेचुरल स्पॉन्टेनियस एक्टिंग है, उसकी वजह से मैं दिलवाले को 5 में से 2.5 दूंगा।
दिल तो सबके पास होता है, लेकिन दिलवाले सब नहीं होते हैं, लेकिन ऑडियंस जरूर दिलवाले होती है। तो दिलवाले के बारे में इनकी क्या राय है?
बकवास, दोनों ही बहुत अच्छे, केमिस्ट्री अच्छे बढ़ गए शाहरुख एंड काजोल दे, स्टील द लाइमलाइट।
दोबारा लोग वापस से उनको देख के बहुत अच्छा लगा।
सबसे वैसे ये लगा कि मतलब सस्पेंस जो रखे थे वो लोगों ने, अब तक लास्ट तक लोगों को पता नहीं चला कि मतलब क्या है क्या नहीं।
दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं होते।
और अब अखबारों की समीक्षा के साथ अशोक कुमार स्टूडियो में मौजूद हैं। जी अशोक।
जी पंकज जी, आज के सभी अखबारों में निर्भया मामले में नाबालिग दोषी की रिहाई से जुड़ी खबर छाई हुई है। रिहाई पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका को कल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस खबर को नई दुनिया ने हेडलाइन दी है, नाबालिग की रिहाई पर रोक से इनकार। अमर उजाला कहता है कल रिहा होगा निर्भया का नाबालिग दोषी, माँ बोली जुर्म जीता हम हारे। उधर दैनिक भास्कर ने निर्भया की माँ की रोते हुए तस्वीर पहले पन्ने पर छापी है, जबकि दैनिक जागरण ने इस खबर पर लिखा है छोटे पड़े कानून के हाथ। जैसा कि आप जानते हैं 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में एक युवती से बर्बर बलात्कार की इस घटना ने देश और दुनिया को झकझोर दिया था और महिला सुरक्षा के लिए नए कानून का रास्ता तैयार किया था। लेकिन अब इस मामले में जिस तरह एक नाबालिग दोषी को रिहा किया जा रहा है, उसे लेकर कई लोग हताश हैं। इसके अलावा अमर उजाला ने अपने पहले पन्ने पर सबसे ऊपर आज सोनिया और राहुल की पटियाला हाउस कोर्ट में होने वाली पेशी की खबर दी है। दैनिक भास्कर ने इस मामले में सोनिया गांधी का बयान छापा है। बयान कहता है कि नेता दफ्तर में रहेंगे और हम कोर्ट में जाएंगे। खबर के मुताबिक सोनिया ने साफ किया है कि पेशी के दौरान उन्हें कोई ड्रामा नहीं चाहिए। नवा टाइम्स के पहले पन्ने पर खबर है फिल्मों का पहले दिन ही विरोध। अमर उजाला में भी ये खबर है कथित असहिष्णुता पर शाहरुख के हालिया बयान को लेकर, जहां उनकी दिलवाले का विरोध हो रहा है, वहीं महाराष्ट्र में कुछ संगठन संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी में इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप भी लगा रहे हैं।
ये भी अजीब तरह की बात है,
अजीब तरह की बात है। हिंदुस्तान की खबर है जीएसटी को छोड़कर अन्य विधेयकों पर विपक्ष से बात बनी। ये खबर है उस सर्वदलीय बैठक की जो कल उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बुलाई ताकि राज्यसभा के बाकी बचे 3 दिनों में कुछ विधेयक पारित हो सके।
उन्होंने कहा है कि देर रात तक काम चलेगा,
काम चलेगा।
भैया तो इतना आपने गतिरोध क्यों कर रहे हो,
इतना हंगामा होता रहा। और चलते चलते एक खबर, विधानसभा की लिफ्ट में पत्नी के साथ यूपी के सीएम 45 मिनट तक कल फंसे रहे। मामले में 2 इंजीनियर निलंबित हो गए हैं। तो ये आज के अखबारों में खबरें हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका। साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी के साथ हैं अब आदेश कुमार गुप्त।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। आज संदीप पाटिल की अध्यक्षता में बीसीसीआई की चयन समिति भारत की उस क्रिकेट टीम का चयन करेगी जो अगले साल ऑस्ट्रेलिया में एक दिवसीय और 2020 मुकाबले खेलेगी। पिछले दिनों अपनी ही जमीन पर दक्षिण अफ्रीका से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 3-0 से जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम अब अगले साल ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, जहां वो 5 एक दिवसीय और 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज खेलेगी। भारतीय टीम की कमान एक दिवसीय और 2020 मुकाबलों में महेंद्र सिंह धोनी संभालते हैं, जिनकी कप्तानी में भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के हाथों एक दिवसीय और 2020 दोनों ही सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। और अब बात मुक्केबाजी की। भारत के स्टार मुक्केबाज विजेंद्र सिंह आज मैनचेस्टर में अपना 3रा प्रोफेशनल मुकाबला खेलेंगे। ये मुकाबला 6 राउंड का होगा, जहां उनका सामना अनुभवी समेट हुसैनोव से होगा। इससे पहले विजेंद्र ने सोनी विटिंग को 3रे राउंड में और दूसरे मुकाबले में डीन गिलेन को पहले ही राउंड में नॉकआउट किया था। इससे पहले हुसैनोव ने कहा कि मैं विजेंद्र जैसे नौसिखिए मुक्केबाज को कड़ा सबक सिखाऊंगा, जो मेरी नजर में नाटक के मुक्केबाजों से ज्यादा कुछ नहीं है। उनके दावों को लेकर विजेंद्र सिंह कहते हैं, मैंने उनके रिकॉर्ड देखे हैं, उन्होंने शायद 14 या 17 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से केवल 7 जीते हैं। ये कोई दमदार रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने मीडिया में बहुत कुछ कहा है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जबकि मेरा कहना यही है कि मैं अपना जवाब रिंग में ही दूंगा, जरा इंतजार करें। विजेंद्र सिंह के शब्द। तो दोनों मुक्केबाजों के जीत के दावों से मुकाबला पहले ही गर्माया। और अब बात फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग आखिरकार अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जहां कल इसके फाइनल में चेन्नईयन फुटबॉल क्लब का सामना गोवा फुटबॉल क्लब से होगा। इससे पहले चेन्नईयन हालांकि लीग के सेमीफाइनल में बुधवार को एटलेटिको से 2-1 से हार गई थी, लेकिन उसने पहले चरण के मैच में एटलेटिको को 3-0 से हराया था, जिसका लाभ उसे मिला। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और कार्यक्रम के अंत में सुनिए प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरिया में शांति प्रक्रिया से संबंधित एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने यूरोपीय नेताओं से आग्रह किया है कि वो शरणार्थियों को बसाने के लिए एक विशाल कार्यक्रम तैयार करें। अमरीकी सेना का कहना है कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमरीकी नेतृत्व वाले गठबंधन के एक हवाई में फलूजा के निकट गलती से इराकी सैनिकों के मारे जाने की आशंका है। और ग्रीस की राजधानी एथेंस में हजारों लोगों ने प्रदर्शन कर यूरोपीय देशों से मांग की है कि वो शरणार्थियों के लिए अपनी सीमाएं खोलें। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने, पंकज प्रियदर्शी और अशोक कुमार को अनुमति दीजिए। आपसे ठीक एक घंटे बाद विश्व भारती में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए bbchindi.com है आपके साथ। नमस्कार।